नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव को हराकर विम्बल्डन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।